Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद मनोज जी.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज ट्रिनिटी ऑफ टैलेंट टेम्परमेंट एंड टेक्नोलॉजी विल ट्रांसफॉर्म इंडियाज फ्यूचर. बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेज एंड नियरली फ्लैट. Sensex adds 70 points, Nifty closes above 24,330. And global crude oil prices drop amid lower demand growth expectations. Brent crude trades at $64.73 per barrel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिभा, प्रवृत्ति और तकनीक का त्रिवेणी संगम देश के भविष्य को बदलेगा. घरेलू शेयर बाजार बिना किसी खास उतार चढ़ाव के आज हुए बंद. सेंसेक्स 70 अंक उछला, निफ्टी 24,330 के ऊपर बंद हुआ. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग घटने की आशंका से कच्चे तेल के दाम फिसले. ब्रेंट क्रूड के भाव $64.73 प्रति बैरल के स्तर पर आए.
Prime Minister Narendra Modi has said that the trinity of talent, temperament and technology will transform India's future. Mr. Modi stated this while addressing the Yugam Conclave, a first-of-its-kind strategic conclave convening leaders from government, academia, industry and innovators at Bharat Mandapam in New Delhi today. He highlighted that a country's future is dependent on its youth, which is why it is crucial to prepare them for India's bright future. Prime Minister noted that the new education policy is driving transformation in the country. Mr. Modi said that the government is working on the vision of Make AI in India with the objective of making artificial intelligence work for India. Puneet, it's very relevant today when you talk about artificial intelligence, but that's in the context of productivity. How do you improve the productivity of the workforce using artificial intelligence? Obviously, you have to train the youth to achieve the demographic dividend. Education technology, Prime Minister spoken about the importance of promoting AI in education. But when you go beyond that and look into the job market, manufacturing, for instance, how do you ensure machine learning and artificial intelligence is used in the right way for a more productive India? Metrically speaking, gross domestic product and obviously the income that your typical Indian earns from their job.
So Arjun, you're right. I mean, if you look at the approach that the government has taken, and let us be mindful of the fact that we have this new age which has dawned on the I would say the business environment, which is the adoption of artificial intelligence. 30-40 years back, we had computers which had just entered the domain, and we saw some transformation in manufacturing practices, in the global trade systems, in efficiency of global trade systems vis-a-vis financial markets, etc. But what has happened with AI adoption lately is that the whole manufacturing paradigm that we thought that, okay, manufacturing can take place in places, in countries where labor is cheap, that presumption, I think, is being challenged, because artificial intelligence can raise productivity even in high labor cost countries. Also, simultaneously, what we see is that this whole race for AI leadership is being led by one or two countries. It's not as if it is something which we are seeing the growth of that across the world. What is happening is that few countries are leading that whole race because they have the resources. You need very large resources when you are developing AI models, because the training costs, the infrastructure that you need, the hardware that you need. Therefore, I think it is important that India is not trying to get into that frame. And Prime Minister, of course, is trying to get the whole ecosystem respond to it.
So that's called the innovation ecosystem. But if you talk about your companies, which are part of Sensex and Nifty, you have e-commerce firms have turned into unicorns, billion-dollar company valuations. Obviously, there are questions on earnings, but they're all based on machine learning and artificial intelligence, fintech companies, for instance. Healthcare has seen a lot of artificial intelligence being pumped in. Do you see this in other startups and other collaborations with established companies for spin-offs, etc.? Do you see that as a future, and how do you see investors looking into it?
So, Arjun, if you look at the most valuable companies in the world today, so the so-called Magnificent Seven, they're all technology companies. So earlier we used to have big companies like Coca-Cola, or we would have banks, or we will have automobile companies as the largest companies in the world. Today, if you look at the largest companies, the top 10 companies, then you have Nvidia's, you have Meta, you have Google, Alphabet. So clearly, I think it is the technology companies which are now in the forefront of economic development. And therefore, I think in India also, while we do see a lot of material companies like the cement and steel, and they're leaders in terms of market capitalization. But going forward, I think technology will definitely be up front.
पुनीत जी, हम आपका ध्यान आज का जो ये आयोजन हुआ है उसकी ओर, और प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, प्रतिभा, प्रवृत्ति और तकनीक, इन तीनों का संगम देश को आगे ले जाएगा. हम श्रोताओं की ओर से ये समझना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन, इनका आयाम कितना बड़ा है, और निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र कहने या सरकारी जो नीतियां हैं उनका, और प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने से किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें आने वाले दिनों में.
मनोज जी, देखिए, जब प्रधानमंत्री इस प्रकार का आयोजन करते हैं और इस प्रकार का एक लक्ष्य पूरे देश के सामने रखते हैं, तो आपको हैरानी होगी कि पूरा जो पॉलिसी डायरेक्शन है या सरकार की जो एफर्ट है और प्राइवेट सेक्टर का जो एफर्ट है, वो सारा उसी डायरेक्शन में. एक ये विजन जो है वो कोई 2 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए नहीं है, ये आने वाले 25 वर्षों के लिए ये विजन प्रधानमंत्री सेट करते हैं. मुझे याद आता है कि जब प्रधानमंत्री ने पहली बार जब लाल किले से भाषण दिया, उसमें कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल को मैं मिला करके टेक्नोलॉजी आगे लाऊंगा, तो शायद देश ने नहीं सोचा था कि जब हम आज UPI देखते हैं या हम जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन या मोबाइल पर हम देख रहे हैं, जिस प्रकार का क्विक कॉमर्स चल रही है, ये सारा आधार वहां पर है. तो इसका विजन आज से 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने जब जैम की बात करी थी, तो वो उसका नींव वहां उन्होंने रखी थी. इसी प्रकार से मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री आज बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और उसके इकोसिस्टम की, वो आने वाले 25-30 वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए, वो जो जिस डायरेक्शन में वर्ल्ड इकोनॉमी डेवलप होनी है, उसका वो आधार रख रहे हैं, विजन दे रहे हैं. अब देखिए, सबको मिलकर के उस रास्ते पर चलना है, बट दिस इज द विजन.
यानी हमने देश में, श्रोताओं, देखा कि एक अकाउंट हो, एक आपका पहचान हो, और एक आप तकनीक हो जिसके माध्यम से आप कारोबार को या कह लें अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें. तो UPI, मुझे लगता है वैश्विक स्तर पर इसकी महत्ता को आज सराहा जा रहा है. तो कुछ इसी तरह का आयोजन आज का भारत मंडपम का है, जिसे आने वाले दिनों में इसके परिणाम हमको देखने को मिलेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शेयर बाजार की ओर. घरेलू शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिला जुला संकेत दिखा, जिसके प्रभाव से निवेशकों के बीच थोड़ी अनिश्चितता देखी गई. कारोबार हालांकि एक सीमित दायरे में हुआ और अंत में प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स अंत में 70 अंक बढ़त के साथ 80,288 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 7 अंकों की मामूली बढ़त लेकर 24,336 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो वहां भी लगभग ऐसा ही रुख था. BSE मिड कैप इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि दिखी. वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बंद हुआ.
Benchmark domestic equity indices ended nearly flat in today's volatile session and mixed global cues. The 30-share index of the BSE Sensex added 70 points to close at 80,288. The NSE Nifty 50 arose marginally by 7 points to settle at 24,336. The broader market indices of the BSE also ended in positive territory. The mid-cap index advanced over 0.2% and the small-cap index ended nearly flat. in the Sensex pack. 16 out of the 30 companies registered losses. In the top laggards, Sun Pharma as well as Ultratech Cement both slid 2% each. Power Grid slipped over 1.7% and NTPC dropped over 1.2%. Among the top gainers, Reliance gained over 2.3%, Tech Mahindra rose over 2.1%, and Eternal advanced more than 1.7%. In sectoral indices, the BSE, 13 out of the 21 sectors ended in negative territory. In the top laggards, utilities fell over 1%, metal lost almost 1%, and healthcare slipped over 0.8%. Among the top gainers, focused IT climbed more than 1.2%, information technology rose over 1.1%, and capital goods climbed 0.9%. The overall market breadth of the BSE was negative as shares of 2,095 companies declined, 1,830 companies advanced, and shares of 129 companies remained unchanged. The NSE, 33 companies hit their 52-week high, while 17 companies hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 22 पैसे कमजोर हुआ, 85 रुपए 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 99.27 पर चल रहा था. पुनीत जी, बाजार में आज के रुख पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, किन अर्थों में ले रहे कारोबार को?
मनोज जी, देखिए बाजार को यदि हम पिछले कुछ सप्ताहों से देखें, कुछ दिन सत्रों से देखें, तो काफी वोलेटाइल मार्केट्स हैं. हालांकि बाजार में काफी कमजोरी थी इस महीने के शुरुआती दौर में, जब टैरिफ्स को लेकर चिंताएं थी, वहां से बाजार में बड़ी तेजी आई, हमने बड़ा उछाल देखा, बहुत मजबूती देखी. और सबसे बड़ी बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में काफी बड़े पैमाने पर सेलिंग कर रहे थे पिछले कई महीनों से, उन्होंने बहुत बाइंग करी. और अब हम देख रहे हैं कि बाजार वो आज पिछले सप्ताह भी ऊपर रहे पूरे, और आज भी स्टेबल रहे बाजार. कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि बाजारों में काफी अनसर्टिनिटी है, काफी अनिश्चितता है, लेकिन बाजारों में अभी जो बेसिक स्ट्रेंथ है बनी हुई है, यानी जो कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, बल्कि वैल्यू बाइंग यदि हम कहें बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में, वहां हमने वैल्यू बाइंग देखी है. हालांकि ये बात सही है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स थे, यानी जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो होल्डिंग थी, वहां पर जो गिरावट आई थी वो अभी उसमें रीगेन नहीं कर पाए हैं वहां पर लेवल. और वहां मुझे लगता है कि अगर ये बाजार आगे थोड़ा और मजबूत होते हैं तो हम मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ रिकवरी देख सकते हैं. लेकिन मैं साथ में कहना चाहूंगा कि देखिए आगे आने वाले समय में भी काफी चिंताएं हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं भारत पाकिस्तान को लेकर. अभी टैरिफ का जो मसला है वो सुलझा नहीं है अमेरिका में, और वो सिर्फ हमने पोस्टपोन किया है, और उसमें से भी एक महीना निकल गया है. वो जैसे जैसे वो डेडलाइन पास आएगी वैसे प्रेशर बढ़ेगा. तो मुझे लगता है अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉशियस रहना चाहिए. दे शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय दिस बुलिशनेस इन द मार्केट. हालांकि माहौल पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी कॉशियसनेस काफी एडवाइस्ड है.
Puneet, just taking a cue from that, the volatility index in India has gone up to 17.37, and anything over 20 is when the markets have truly crossed a threshold of volatility. Like in the US, it's 25.19, and now the markets are settling down there. But just looking at the Sensex and Nifty, both the FIIs and DIIs were the net buyers in the market today, but they were net buyers of large cap stocks. So the volatility that we are seeing is primarily in the mid cap and the small cap indices, where you have a lot of retail participation, not so much institutional participation. So what's the strategy right now of all this buying interest in large caps by FIIs, because they seems to have really re-entered our market in the midst of geopolitical tensions?
So Arjun, if we look at the relative strength of mid caps vis-a-vis large caps, then mid caps have not been doing too well. In fact, there's an inherent weakness there. And unfortunately, retail investors are holding most of the portfolios in mid caps and small caps. Large caps are held largely by institutions, FIIs, or domestic institutions. And that is where liquidity flows are still strong. Even if you look at the mutual fund data, which came last year,
they also buy large caps.
They're also buying large caps. So they are, and basically fund flows are also in large caps. So I think large right now, if anybody wants to really invest or trade, investing, I don't know, long-term investing is wise at this point of time. But if somebody wants to trade in these markets, because the markets are very volatile, then I think large caps is the place to be. And that is what probably FIIs are doing. FIIs may not be buying for the long haul in India yet. They may be looking at opportunities in trading. And because the dollar was becoming weaker, the dollar index went down and money was flowing out of America into India, not only India, into all emerging markets and other assets. So I think this is more of a trading market than a long-term investing market right now.
पुनीति यहाँ पर फिर कह लें जो हमारे श्रोता हैं और जिन्हें हम बिल्कुल छोटा निवेशक मान सकते हैं उन्हें अपनी प्रवृत्ति अपना रुझान कैसा रखना चाहिए क्योंकि बाजार में अनिश्चितता है लंबी अवधि को देखकर यानी 3 महीना 6 महीना भी लें और लंबा लेके चलें तो भी और ऐसे में ट्रेडिंग की प्रवृत्ति की सलाह आमतौर पर हमारे विशेषज्ञ नहीं देते तो उन्हें अपना रुख क्या रखना चाहिए
देखिए ट्रेडिंग कल की एडवाइस मैं भी नहीं दूंगा बिकॉज जो छोटा निवेशक होता है वो ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड नहीं है स्किल नहीं है उसकी और बड़े इंस्टीट्यूशन जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो चांसेस ये हैं कि वो आपको ट्रैप कर सकते हैं या आपसे गलती हो सकती है तो हालांकि ऑन पेपर तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप ट्रेड कर सकते हैं थोड़ा पैसा बना सकते हैं पर असली में ऐसा नहीं होता स्मॉल इन्वेस्टर्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फोकस है उसको मेंटेन रखें लेकिन इस समय क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है बहुत ज्यादा चैलेंजेस है मार्केट सामने कोई बड़ा निवेश ना करें कोई जरूरत नहीं है कि कोई बहुत बड़ा निवेश करें या बहुत बड़ा रिस्क लें थोड़ा वेट करें थोड़ा इंतजार करें मुझे लगता है 2-3 महीने में ये पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी जो यूएस की टैरिफ्स को लेकर चिंताएं हैं कि ये वेदर इकोनॉमी में रिसेशन आता है या बाजारों में प्रेशर आता है और भारत का भी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो भी क्लियर हो जाएगी मुझे लगता है आने वाले 2 महीने मई और जून का जो महीना है ये बड़ा क्रूशियल है मार्केट्स के लिए भारतीय मार्केट्स के लिए कोई बड़ा निवेश ना करें छोटा कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ठीक है
यदि हम यहाँ पर ये समझना चाहें यानी पिछले 1 साल के अनुभव को देखते हुए कि आने वाले 1 साल के लिए या 2 साल के लिए सेक्टर कौन सा उभरता हुआ और सुरक्षित दिख रहा है जहां निवेश करना भले ही छोटे निवेश ही हम लगातार करते रहें सिप के थ्रू करते रहें लेकिन उसमें निवेश सुरक्षित रहे
देखिए 2-3 क्षेत्र जो हैं वो बड़े उभर कर आए हैं पीछे और हमें लगता है कि आने वाले अगले जो रैली होगी मार्केट की उसमें वो स्ट्रेंथ रहेगी एक तो क्लियरली डिफेंस सेक्टर जो है डिफेंस सेक्टर में की जो सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है मुझे लगता है आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव रहेंगे दूसरा आईटी सेक्टर क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नई संभावनाएं आ रही हैं तो टेक्नोलॉजी डिफेंस कम्युनिकेशंस मीडिया ये और हेल्थ केयर ये जो सेक्टर्स हैं हमारा अनुमान है कि ये सेक्टर्स जो हैं आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे रहेंगे
अपनी योर टेक ऑन द 4th quarter रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज आई नो दैट बैंक निफ्टी एक्चुअली वेंट डाउन बाय 50 पॉइंट्स बट इफ यू लुक एट कंपनीज फॉर इंस्टेंस लाइक या बजाज फाइनेंस एंड अदर कंपनीज इन द बैंकिंग स्पेस लाइक फेड बैंक यू नो दे ऑल हैव पॉजिटिव fourth quarter numbers, net interest income, net profitability, they all have done fairly well. India Cements has also come out with numbers today. So from a fundamental perspective, when you look at corporate earnings, not valuations, but earnings, and then look at how the investor should go into investing up. What's your assessment of the 4th quarter right now?
So Arjun, the numbers that have come out so far, they tell us that services sector, which is basically banking, hospitals, hotels, you know, they still seem to be doing better. There was some pressure on manufacturing side. So steel companies, cement numbers that we have got, they have not been very robust. So even if you look at the Reliance numbers, which is a large company, largest company in the country, there the commodity business, which is the oil business, did not do very well. But the other services business have done well. So clearly, I think going forward, that will remain the trend. And again, I would say that let's wait for a few more months because then we will know whether the economy is slowing down. If economy slows down, then I think manufacturing sector will definitely take a hit.
I want to ask you a macro question now because we've already covered how the markets have moved. The bond market, the central bank is into a bond buying program. We typically talk about their monetary policy, what is going to be the repo rate, how many basis points are they going to cut the repo rate so that you know the bank rate is lowered and it's easier for consumption purposes when you borrow. Why is the RBI into the bond buying program?
So Arjun, RBI in the last meeting, in last MPC meeting, they made a very important announcement. They said that we are now moving towards a monetary stance which is accommodative. Accommodative means they will put more liquidity into a system. That is the RBI for the last many years was in a restrictive stance, and then they went to neutral. Restrictive is when they're withdrawing money from the system because they feel that more money will lead to inflation. So right now, RBI is comfortable with inflation, and therefore they have now shifted the stance in the last MPC to accommodative, which means now they are pumping money into the system. How do they pump money? The one way is, of course, lower rates where banks can borrow from RBI and then lend further. The other is, of course, they start buying bonds from the market. So if they are buying bonds, that means they are buying, they're putting money into the hands of banks because banks are sellers. And also when you buy bonds, you lower the interest because the prices go higher, the yields go lower. And that
what
is
are these bonds? Are these corporate bonds that the central bank is buying?
No, these are government bonds. These are called government securities, G-Secs, which are issued by the RBI. And they're mostly held by banks and large institutions. So banks, they hold them as liquidity...
SLRs, statutory liquidity ratio.
And liquidity buffers. So clearly, when RBI starts buying bonds, it brings down the interest rates and also puts more money in the hands of banks. So that is how they are pumping money into the banking system.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख दिखा है. निवेशकों की खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक आज 0.6% ऊपर उठकर बंद हुआ. हांगकांग के हेंगसेंग सूचकांक में 0.16% की वृद्धि हुई. उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% से अधिक घाटे में रहा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में कोई खास परिवर्तन आज नहीं दिखा. उधर जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण कारोबार बंद रहा. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो ताजा समाचार मिलने तक वहां प्रमुख सूचकांक मिला जुला रुझान दिखा रहे थे. अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डेक्स 0.5% से अधिक और लंदन का फुटसी 100 भी 0.2% से अधिक ऊपर चल रहा था. उधर बिकवाली के दबाव में फ्रांस के कैक 40 में 0.3% की गिरावट दिख रही थी.
पुनीत, द बैंक ऑफ जापान इज गोइंग टू हैव अ मीटिंग टुमारो एंड इंसिडेंटली द येन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मेंशन अबाउट कैरी ट्रेड सम टाइम बैक एंड यू हैड द मार्केट स्पाइकिंग एंड देन deflating and then inflating as well. How important is Japan right now? Because they've been selling treasuries of the US right now. What are they going to decide that's going to impact global markets?
So the most important decision which Bank of Japan has to take is the interest rate, whether they want to increase the rates further. And that is at a time when Japan is facing some inflation right now, but they still want to raise interest rates going forward. And I think that is a very important decision, because if they increase the interest rates, yen will appreciate further vis-a-vis the US dollar and push down the US dollar further. US dollar index will go down if yen appreciates. So clearly, it is not just about the interest rates in Japan. Any decision in Japan affects the yen rate, it affects dollar index, it affects the global economy. And I mentioned just now that if dollar index changes, FIIs that change the behavior in markets like India. So this is a global event, and we really need to watch it.
Clearly, the objective of Japan is to ensure that the debt burden is always low, isn't it? That's the reason why they want to keep the yields low.
They have always kept the yields low. In fact, they had kept interest rates negative for many, many decades. And only now they feel that that needs to be changed. They want to increase the yields further.
Let's have a look at the U.S. markets now. U.S. stocks ended with marginal gains on Monday as investors awaited several catalysts, including key economic data and earnings of some of the largest U.S. companies. Dow Jones Industrial Average rose over 0.2%. NASDAQ Composite added 0.1%. And the S&P 500 closed a choppy session nearly unchanged with a positive bias, marking its fifth straight daily advance and the longest streak of gains since early November. How do you see the U.S. First quarter results, because it's a calendar year, in the aftermath of the tariff announcements? But will the tariff have kicked in to have an impact on their earnings for the first quarter only?
So clearly the first quarter numbers are not affected by tariffs, because tariff announcement came on 2nd of April, which was after the end of March quarter. In any case, there was some front running and we saw a lot of buildup of inventory in March quarter itself. The numbers that we have seen so far mostly are from technology companies. They seem to be doing okay. But again, the real economy companies, the manufacturing companies and the automobile companies, they seem to have had a very disappointing first quarter so far. And I think going forward, the real threat is that the U.S. economy will slow down further.
Well, let's have a look at the oil prices now. Oil prices slipped today as investors lowered their demand growth expectations due to the trade war between the US and China. Brent crude was trading over 1.7% down at $64.73 per barrel. WTI crude was also down by 1.6% at $61.14 per barrel. Then reports last came in. There are other reports also that WTI crude has fallen by 14% month to date. How do you see the oil market right now with consumption, especially from China, having come down drastically? How does a country like India hedge its position, even though there are multiple suppliers? You have the US, you have Russian crude oil. Of course, you have crude oil supplies from the Middle East also.
So, oil market is in a great flux because there's a whole redefining of the demand and supply equation and suppliers, and with US pumping more oil maybe. So, my take in gist is that oil prices are going to head lower going forward over the next 5-7 years, and that decline, the long-term decline in oil prices, I think that has begun.
आइए अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर हम आपको सर्राफा बाजार लिए चलें। सर्राफा बाजार में सोना आज थोड़ी सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.69% घटकर 95,660 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं चांदी 0.49% घटकर 97,570 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। एमसीएक्स पर ध्यान दें तो वहां अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.7% घटकर 95,352 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मई आपूर्ति वाली चांदी 0.64% बढ़कर 97,085 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। यहां पर समझना चाहेंगे, कल अक्षय तृतीया है तो सोना तो हम खरीदेंगे ही, कोई संदेह ही नहीं, लेकिन सोने के खरीदारी दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही है, ये क्या संकेत दे रहा और किस कह लें कि आर्थिक परिदृश्य को दर्शा रहा?
देखिए, जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, जैसे अभी हो रही है, ग्लोबल ट्रेड का असर होता है या थ्रेट होता है कोई वॉर का या कोई जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, तो सेफ हेवन की तरह जो उसको एक सेफ्टी के लिए जो जितने भी बड़े देश हैं वो या तो पहले यूएस डॉलर खरीदते थे या वो गोल्ड खरीदते थे, क्योंकि डॉलर की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है, पर्टिकुलरली यूएस टैरिफ जो बात चल रही है उसको लेकर। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारे दुनिया में जो अब फर्स्ट एंड ओनली ऑप्शन एक तरह से सेफ हेवन जो है वो गोल्ड हो गई है, और सभी सेंट्रल बैंक, ना सिर्फ आपका शायद गोल्ड खरीदेंगे, शायद बड़े बड़े जो बैंक है दुनिया के वो भी गोल्ड खरीदेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि रेट्स जो है वो काफी तेज लगते हैं।
In more news, the central bank has decided to inject more liquidity into the banking system through the purchase of government bonds for an aggregate amount of 1.25 lakh crore rupees in the month of May. The central bank's open market operations, OMO, to purchase government bonds will be carried out in four tranches between May 6 and May 19. The decision was taken after a review of current and evolving liquidity conditions, according to an RBI statement. The move comes follows the RBI's announcement on April the 1st to buy government bonds worth 80,000 crore rupees, which was followed by another 40,000 crore rupees purchase announced on April 11. In more news, despite challenges like weak demand, geopolitical tensions and high borrowing costs, about 30% of firms in the private corporate sector plan to invest in upgradation in the financial year 2024-25, supporting the sharp increase in capital expenditure last fiscal, according to the survey data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation. According to survey estimates, nearly 40.3% of enterprises plan to undertake capex on core assets during 2024-25. Additionally, 28.4% intend to invest in value addition to existing assets, while around 11.5% focus on opportunistic assets and 2.7% on debt strategies.
खबरों का सिलसिला थोड़ा सा और बढ़ाएं। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही चर्चाओं के अंतर्गत भारत और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच 23 से 25 अप्रैल तक वाशिंगटन में चर्चा हुई। उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों में व्यापार शुल्क और गैर व्यापार शुल्क मामले जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद विनोद जी।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says trinity of talent, temperament and technology will transform India's future. Benchmark domestic equity indices end nearly flat. Sensex adds 70 points. Nifty closes above 24,330. And global crude oil prices drop amid lower demand growth expectations. Brent crude trades at $64.73 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
Mark is a